ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे अब नाटक पूरा होता है, घर चलना है, इसलिए इस शरीर रूपी कपड़े को भूलते जाओ, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। मीठे बच्चे अब नाटक पूरा होता है, घर चलना है। बच्चे सोच विचार आता है कभी कि घर चलना है? चिंतन करो अपने से, कब तक यहां रहोगे? देखो बच्चे, जब तक इस दुख की दुनिया में तुम्हारा मन लगा हुआ है, तुम्हें घर जाने का मन नहीं होगा, और तुम्हें इस दुख में सुख अनुभव होता है, ये तुम्हारी माया है या बस दुख है? तुम जो रात को सो रहे हो वो कांटे का बिस्तरा है, कांटे का तकिया है, तुम्हें सुख भाता है। सुबह उठते हो तुम्हें सुख लगता है, अन्न खाते हो, वस्त्र पहनते हो, तुम्हें सुख लगता है। बच्चे सुख है ही नहीं, किसी भी बात में नहीं है। तुम्हारे अन्न से भी बीमारियां आ जाती है, वस्त्र भी तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम्हारे घर में भी अनगिनत जीव रहते हैं। ये सब क्या है? कांटों का जंगल है बच्चे, और इस जंगल में तुम्हारा मन लगा हुआ है। अभी इससे क्या कह सकते हैं? कांटों के जंगल में थोड़ी किसी का मन लगता है। बच्चे मुक्ति की राह तुम्हें तब तक नहीं मिल सकती जब तक तुम्हें इस दुनिया में रस आ रहा है। जब तुम इस दुनिया से नीरस हो जाओगे कंप्लीटली, तब तुम्हें मुक्ति की राह मिलेगी। तुम्हें मेरा ज्ञान तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक तुम दुनिया के ज्ञान से अज्ञानी नहीं होते। तुम दुनिया के ज्ञान से ज्ञानी हो, इसलिए तुम मेरा ज्ञान नहीं समझ पा रहे हो। तुम्हें लगता है होगा नहीं होगा पता नहीं, कब होगा कैसे होगा पता नहीं। तुम इतने वर्षों से ज्ञान में चल रहे हो, आत्मिक स्थिति नहीं बन पा रहे। क्यों बच्चे? क्योंकि तुम्हें होश नहीं है कि अब घर चलना है। आत्मिक स्थिति सिर्फ उन्हीं की हो सकती है जिन्हें पता है, जो इस जागृत अवस्था में है कि अब नाटक पूरा हो रहा है, अभी घर जाना है। जिन्हें पता है घर जाना है, वही आत्मिक स्थिति में आ सकते हैं, और बाकी खेल तो आत्मिक स्थिति के बाद है। वरना बताओ जरा मुझे, सतयुग त्रेता वो आत्मिक स्थिति अलग है, द्वापर से लेकर कलयुग के अंत तक कब जरूरत है आत्मिक स्थिति की? कहाँ पर जरूरत है, किस लिए जरूरत है, जरा बताओ तो सही। आत्मिक स्थिति चाहिए बस घर जाने के लिए। आत्मिक स्थिति का अर्थ क्या है? मैं जो हूँ उस सत्य स्वरूप में स्थित हो जाऊँ। वो मैं कब होऊंगा? जब मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है। इसलिए जाने की जो बात है ना, घर चलना है, ये बड़ी बात है। जब तक ये बात पक्की नहीं होती बच्चे, तुम आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकते। इम्पॉसिबल है। मुझे पता है मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मेरे आत्मिक स्थिति में आने और ना आने की कोई बात ही नहीं आती, मैं तो सदा हूँ आत्मिक स्थिति में। तुम्हारा क्या? ज्ञान तो तुम्हारे लिए चल रहा है। समझ की बात है बच्चे? विचार करो अपने से, चिंतन करो। अब नाटक पूरा होता है, घर चलना है, इसलिए इस शरीर रूपी कपड़े को भूलते जाओ। तुमने कपड़े को स्वयं का अस्तित्व समझ लिया, कपड़े को। अब ये बहुत बड़ा पागलपन हो गया कि वस्त्र को मैं समझना, मैं तो वस्त्र के अंदर है, तुमने वस्त्र को मैं बना दिया। अब ये कितनी बड़ी भूल है, इस भूल से उभरो जरा, वस्त्र को भूलो, समझ की बात है, समझदार बनो। जब तक वस्त्र को नहीं भूलते तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। वस्त्र को भूलो, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। बच्चे तुम्हें कोई शरीर नहीं था, परमधाम में अशरीरी थे, समझ की बातें। तुमने जितने भी जन्म लिए कौन कौन से वस्त्र को याद करोगे, और अगर नहीं कर सकते तो अब के वस्त्र में जान क्यों अटकी है, दिल क्यों अटकी है। वस्त्र से जरा डिटैच हो जाओ। मैं मेल हूँ, फीमेल हूँ, बच्चा हूँ, जवान हूँ, बूढ़ा हूँ, फिर तुम्हारा एजुकेशन, प्रोफेशन, क्वालिफिकेशन, क्या क्या आ जाता है, कितने रिश्ते आ जाते, चाचा मामा काका, कहाँ अटके हो, कहाँ चाचा मामा बन के बैठे हो। बच्चे तुम आत्मा हो, थोड़ी कोई चाचा मामा हो, जरा होश में आओ। ये नाटक पूरा हो रहा है और तुम चाचा मामा के चक्कर में अटके हो, अजीब बात है। तुम अशरीरी आत्मा हो जिसे कोई शरीर नहीं था। पार्ट बजाने के लिए ड्रामा प्लान अनुसार, पार्ट अनुसार, तुम्हारे कर्म के भाग्य के अनुसार तुम्हें शरीर, वस्त्र, कपड़ा, चोला मिलता गया और तुम पार्ट बजाते गए, बजाते बजाते सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक, और अभी संगम के अंत तक तुम पहुंच चुके हो। अभी तो भूल जाओ, कब भूलोगे बच्चे। कल तुमने भोजन किया, सुबह भूल जाते हो, दूसरे दिन भूल जाते हो, क्या किया, तो वस्त्र को क्यों याद रख रहे हो। सुबह क्या खाया शाम को भूल जाते हो, सुबह क्या किया शाम को भूल जाते हो, तो वस्त्र को क्यों याद रख रहे हो। सबसे पहले वस्त्र को भूलो। ये ज्ञान क्या सिखलाता है, सत्यता में आना, अपने सत्य स्वरूप में आना, यही तुम्हारा कर्तव्य है। बच्चे देखो, जब तक तुम सत्य स्वरूप में नहीं आते तब तक सब का सब व्यर्थ है। तुम क्या पुरुषार्थ करोगे, कौन सा करोगे, पहले सत्यता में तो आओ। बच्चे क्यों ना एक दिन ऐसा करें, जब तक आत्मिक स्थिति पक्की ना हो जाए तब तक उसी के साथ चलते रहे, उसी के पीछे लगे रहे, उसी रास्ते पर दौड़ते रहे। क्यों ना ऐसा करे किसी दिन, तब तक ये तपस्या करनी है। देखो बड़े बड़े योगी 12-12 साल तपस्या करते हैं। मैं तुम्हें 12 साल नहीं कहता, 12 दिन की तो करो, कि 12 दिन बस तुम अपने को देखोगे, मैं आत्मा, 12 दिन बस तुम अपने को सुनोगे, मैं आत्मा, 12 दिन बस अपने से बात करोगे, मैं आत्मा, 12 दिन बस अपने से व्यवहार करोगे, मैं आत्मा। बच्चे क्यों नहीं कर सकते। मैं 12 साल नहीं कह रहा हूं और अब इतना समय भी नहीं है, चलो मैं 12 हफ्ते भी नहीं कह रहा हूं, 12 मास तो छोड़ ही दो, 12 दिन की बात कर रहा हूं। 12 दिन की तपस्या करो। बाबा ने आदि में 14 साल की कराई तो 14 दिन की करो। एक ही स्थिति, बच्चे हमेशा ध्यान में रखना, इस बात को कि ऊर्जा कैसे कार्य करती है, एम ऑब्जेक्ट हमें कैसे मिलता है, हमेशा ध्यान में रखना इस बात को कैसे मिलता है। बाबा बता रहे हैं, जब तुम कोई कार्य शुरू करते हो और जब तक तुम उसे प्राप्त नहीं करते अपने एम ऑब्जेक्ट को, तब तक कुछ और न सोचना है, न देखना है आँखों से या बुद्धि से, न सुनना है, न किसी और बात के बारे में बोलना है, न किसी और बात के बारे में कर्म करने हैं, न विचार करना है, न वृत्ति चलानी है, न दृष्टि लगानी है, न बोल बोलने हैं। जब तक तुम उस बात को उपलब्ध नहीं होते, इसे कहते हैं एम ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने का प्रयास करना। ऐसे होता है बच्चे, ऐसे नहीं चलता। 10 कदम हिमालय चढ़े, थकान आई, घर लौट आए, खाना वाना खाया, वापिस चले गए। अभी 50 कदम चले, 20 कदम चले, 100-200 कदम चले, वापिस थके, सोने के लिए घर आए। नहीं बच्चे, ऐसे नहीं चलता, ऐसे थोड़ी होता है। भोजन कब तक करते हो? जब तक पेट ना भरे ना। पेट भराना ये एम ऑब्जेक्ट है ना तुम्हारा, जितनी भूख है उसको पूरा करना एम ऑब्जेक्ट है ना। तो तब तक खाते हो ना जब तक भूख मिटे नहीं। पानी कब तक पीते हो? जब तक प्यास मिटे नहीं। नींद कब तक लेते हो? जब तक पूरी ना हो। देखो बच्चे, हर कर्म, तुम नहाते कब तक हो? जब तक पूरा शरीर ना नहलाए। हर कर्म तुम पूरा पूरा करते हो, तो आत्मिक स्थिति का कर्म पूरा क्यों नहीं? ऐसे कभी होता है क्या, हाथ और पैर नहलाए और तुम बीच में से आए, चाय पी और वापस जा गए नहलाने के लिए बाकी शरीर को? ऐसे कभी होता है? तुम्हें बहुत भूख लगी है, 4-10 निवाले खाए, तुम गए सोने के लिए, वापस उठ के आए, वापस खाया, ऐसे तो नहीं करते। जो कर्म तुम हाथ में लेते हो पूरा करते हो ना, भल छोटा सा कर्म है पर आवश्यक है। उसी प्रकार आत्मिक स्थिति है बच्चे, इसका कोई समय नहीं होता। कोई बच्चे अमृत वेला समय देख के करते, नुमा शाम समय देख के करते, ऐसे नहीं होता। तो फिर रोटी भी देख के खाओ, पानी भी देख के पियो, उसे क्यों जितना चाहे उतना लेते हो? नींद भी फिर देख के करो, 2-4 घंटा, 8 घंटा क्यों करते हो? समझ की बात है बच्चे, एक बार करने को शुरू कर दिया तो उसे तब तक रोका नहीं जाता जब तक प्राप्त ना हो। ये जिद जिसमें है वही आत्मिक स्थिति को उपलब्ध हो सकता है, बाकी नहीं। कितना भी प्रयास करो बच्चे, चलते फिरते तुम कितना भी प्रयास करो आत्मिक स्थिति का, नहीं हो सकती। कंप्लीटली हर सेल की ऊर्जा भी उसी दिशा में लगानी पड़ेगी, हर सेल की। कर्मेंद्रिय छोड़ो, बाबा हर सेल की बात कर रहा है। कर्मेंद्रिय तो लगानी ही लगानी है, पैरों से भी कर्म करते हर कदम में आत्मिक स्थिति, हाथों से कर्म करते हर कर्म में आत्मिक स्थिति, मुख से कर्म करते हर शब्द में आत्मिक स्थिति, कानों से शब्द सुनते हर शब्द में आत्मिक स्थिति, आत्मा सुन रही, दृष्टि से देखते हर दृश्य में आत्मिक स्थिति, नाक से सांस लेते हर सांस में आत्मिक स्थिति। समझ की बात है, बाप ने तो विधिया बनाई है सांसों वाली भी, तुम बच्चे करते नहीं हो। वो विपासना में जाओ, वो अखंड कराते, तब वो अंदर की अनुभूति होती है, आत्मा की बात नहीं कह रहा है बाप, एक अलग शक्ति की अनुभूति होती है। बाबा ने तो आत्मा के साथ जोड़ा है सब, करो तो सही। वो दिन दिन भर बैठते हैं, बस भोजन के लिए, चाय नाश्ते के लिए, सोने के लिए उठेंगे, बाकी उसी अवस्था में बैठना है, एक ही बात करनी है, सब भूल जाना है। बच्चे आत्मिक स्थिति अलग है, तुम्हारी हर सेल उस दिशा में जानी चाहिए, ध्यान में रखना, न्यूरो सेल भी, हर सेल उसी दिशा में जानी चाहिए, तब तुम उपलब्ध होने के आसपास पहुंचोगे, वरना बेहद मुश्किल है, बेहद। एक बार तुम बैठे तब तक नहीं उठना है जब तक मन ना भरे। माया कहेगी भूख लगी है जरा कुछ खाते हैं, प्यास लगी है जरा पानी पीते हैं, निर्जल तो किए हैं ना भक्ति में, तो अभी करो ना। माया कहेगी थोड़ी थकान लगी, अभी थोड़ा सोते हैं, नींद आ रही, देखो तो सही किसी का मैसेज तो नहीं आया, इमरजेंसी कॉल तो नहीं आया। ये सब नहीं चलेगा, सारे विश्व को भूल कर जब तुम इस अवस्था को प्राप्त करने की कोशिश करोगे, सारे विश्व को भूल कर, और तो और अपने इस जन्म के नाम रूप को भी भूल कर, जब तुम इस अवस्था को प्राप्त करने की कोशिश करोगे, और अगर तुम्हारी कोशिश सच्ची रही, दिल से रही, और बाप की कृपा तुम पर रही, तो फिर प्राप्त हो जाओगे इस अवस्था को, वरना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और बच्चे देखो, मैं तुम्हें साफ बताता हूँ, ये आत्मिक स्थिति की जो प्रैक्टिस है, इसमें उन दिनों में तुम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते, आंखों से छोड़ो, तुम्हें बुद्धि से भी किसी और को देखना नहीं, अपने को ही देखना है, किसी और के संस्कारों का विचार भी नहीं करना है, बस मैं और मेरे संस्कार। दुनिया जैसे है ही नहीं तुम्हारे लिए उस समय में, उस दौर में, उस दौरान, बस तुम हो और तुम ही हो। ऐसे जब करोगे तब शायद कुछ हो पाएगा, वरना मुश्किल है। बच्चे 63 जन्म का बॉडी कॉन्शियसनेस भूलना है कोई मामूली बात नहीं है, 63 जन्म का, और वो 63 जन्म का बॉडी कॉन्शियसनेस एक साथ अभी इकट्ठा बैठा है इस जन्म में। इसलिए बच्चे बस इस तन को भूलो पूरा पूरा, इस तन के जो संस्कार है ना उन्हें भी भूल जाओ, खान पान की आदत, घूमने फिरने की आदत, व्यवस्था की आदत। तुम ध्यान से चेक करो अपने आप को, तुम्हारी जो हर आदत है, उठना बैठना, खाना पीना, जागना सोना, ये पुरानी है या नहीं है, चेक करो। पुराने जन्म की तो आदत नहीं है, जब तक पुराने जन्म की आदत है तब तक तुम पुराने हो, तुम नए नहीं हो, और मुश्किल है फिर। पुराने जन्म की कोई आदत ना रहे, समझ की बात है, समझदार बनो बच्चे। हर आदत नहीं, और वो भी कौन सी, श्रीमत की, बाप की, हर आदत, पुराना कुछ नहीं, चलना भी नया श्रीमत अनुसार, रुकना भी श्रीमत अनुसार, बैठना उठना श्रीमत अनुसार, पुराना नहीं, पुराना कुछ भी नहीं, देखना भी श्रीमत अनुसार, बात करने का तरीका, टोन भी श्रीमत अनुसार। ऐसे ना हो बच्चे तुम्हारी टोन सुनकर ये लगे ये फलाने राज्य से है, फलाने जिले से है, फलाने तहसील गांव से लगता है, फलाने देश का लगता है। नहीं बच्चे, तुम लगो तो बाप के ही लगो, बाकी किसी के नहीं। तुम्हारा हर संस्कार बाप का। बच्चे बहुत काम करना बाकी है, बहुत ही ज़्यादा, गफलत मत करो। एक एक संस्कार को मिटाओ, पूरा पूरा मिटाओ। समझ है, मर्जी तुम्हारी। अपने सत्य स्थिति में आओ, समय बहुत कम है। और जो शुरू करोगे अखंड बैठो, अखंड। समझ की बात है। अगर बाप ने कहा श्रीमत नहीं है, और बाप कह भी नहीं रहा है किसी को, करना भी नहीं कोई, साफ साफ बाबा कहता है करना नहीं। अगर बाप ने कहा लगातार 100 घंटे बैठने के बाद आत्मिक स्थिति में आओगे, तो फिर क्या करोगे? लगातार 100 घंटे, फिर क्या करोगे? आदत है 2 घंटा बैठने की, 3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, 16 घंटा, 1 घंटा, वो तो 24 घंटे ही हुए। पर अगर बाप ने कहा लगातार 100 घंटा बैठना है, तब शायद तुम आत्मिक स्थिति में आ पाए तो फिर कैसे करोगे बताओ जरा। लगातार मना ऐसे नहीं कि खाना पीना नहीं है, खाना पीना जागना सोना सभी है, पर उन 100 घंटे में तुम किसी को नहीं देखोगे। उन 100 घंटों में तुम बस अपने साथ रहोगे, कंटिन्यूअस बस अपने को देखोगे। समझ है, तो फिर कैसे करोगे बच्चे? विचार करो अपने से, पूरा पूरा चिंतन करो। इस दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा है आत्मिक स्थिति, और सबसे आसान भी है। सबसे आसान और सबसे कठिन, समझ की बात है। हिमालय चढ़ना सबसे आसान भी है और कठिन भी है। समझ की बातें हैं सारी। बच्चे आदत लगाओ, अभी तो अंत का भी अंत और उसके अंत का भी अंत आ चुका है, और अभी भी बाप वही कह रहा है कि आत्मिक स्थिति में आओ, शोभा देता है। समझ है बच्चे, कब आओगे विचार करो। इसके बिना कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूं तुम सभी बच्चे हाई जंप करना चाहते हो, एक झटके में ब्रह्मा बाप समान अवस्था को पहुंच जाए। बच्चे उस एक झटके में पहुंचने की विधि है आत्मिक स्थिति में आओ। आत्मिक स्थिति में आने के बाद अपने आप ब्रह्मा बाप समान अनुभूति स्टार्ट होगी। मैं आत्मा हूं, सामने वाली आत्मा से बात कर रही हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की मुरली सुन रही हूँ, परमात्मा बैठकर मुझे ज्ञान दे रहा है। हर कर्म में बच्चे, हर कर्म में बॉडी कॉन्शियसनेस आता ही क्यों है, जबकि तुम आत्मा हो। मान अपमान निंदा स्तुति सुख दुख, ये सब बॉडी कॉन्शियसनेस के लक्षण हैं। आत्मिक स्थिति एक समान अवस्था, पहले इस अवस्था में आओ। तुम्हें मार्ग चाहिए ना, राह चाहिए, वे ढूंढ रहे हो। उपाय तो मैंने बता दिया आत्मिक स्थिति, उसके अलावा तुम रास्ता नहीं खोज पाओगे। बिना आत्मिक स्थिति के सारा ज्ञान व्यर्थ है, बिना आत्मिक स्थिति के। बच्चे चेक करो अपने को, अशरीरी हो, अभी भी तुम मुरली सुन रहे हो, पर क्या आत्मा समझकर सुन रहे हो? आत्मा सुन रही क्या, या बस नाम रूप से मुरली सुन रहे हो? चेक करो, व्यर्थ जाएगा सब सब कुछ। दिन में मैं ये नहीं कहता कि 10 को चेंज करो मुरली, पर दिन में एक तो ऐसी मुरली पढ़ो, एक बस ऐसी पढ़ो कि हर अक्षर आत्मा पढ़े। और जब आत्मा नहीं पढ़ रही है तो पढ़ना नहीं है, रुकना है। जब आत्मा इमर्ज होगी, पढ़ेगी, तब ही उसे पढ़ना है। भल एक मुरली पढ़ने में एक क्या, दो क्या, 3-4 घंटे लगे तो भी चलेगा। अच्छे से खा पी के मुरली पढ़ो, 3-4 घंटे लगे तो भी चलेगा, पर हर अक्षर आत्मा देखेगी, बुद्धि से, आंखों से, और आत्मा पढ़ेगी और आत्मा सुनेगी। समझ है, परमात्मा के वचन है बच्चे, परमात्मा के वचन। आसानी से हो जाएगा सब, पर करना तो चाहिए बच्चों को। बच्चे, बिना आत्मिक स्थिति के सब व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। बिना आत्मिक स्थिति के कुछ भी करो तुम, सब कुछ व्यर्थ है। तुम ज्ञानी नहीं हो, अज्ञानी हो बिना आत्मिक स्थिति के। ज्ञानी कौन? जो आत्मिक स्थिति में है, और वो कभी नहीं कहेगा मैं ज्ञानी हूं, वो यही कहेगा मैं तो अज्ञानी हूं। आत्मिक स्थिति में है ना वो कभी नहीं कहता। और बिना आत्मिक स्थिति वाला, हाँ हमें आत्मा का ज्ञान पता है, परमात्मा को भी जानते हैं, जानते हैं मन, इसके घर में बैठता है परमात्मा, परमात्मा भी हमें पता है, पता है मन, तूने क्या समझ के रखा है परमात्मा को? समझ की बात है, अरे कुछ तो समझ के बात करो। कोई कहता है हमें परमात्मा मिल गया, जरा दिखाओ तो सही, पूछो उन्हें। और परमात्मा मिलने के बावजूद रो रहे हो तुम, हंसते क्यों नहीं, खिलखिलाते क्यों नहीं, मौज क्यों नहीं करते? समझ की बात है बच्चे, चिंतन करो अपने से। जब तक आत्मिक स्थिति में नहीं आते सब व्यर्थ है। ड्रामा भी उन्हें ही समझेगा जो आत्मिक स्थिति में आएंगे, और राजयोग भी वही कर पाएंगे जो आत्मिक स्थिति में आएंगे। बाकी राजयोग कहाँ से करोगे? समझ है, समझदार बनो, पूरे पूरे समझदार बनो। तुम कहते हो तुम राजयोगी हो, आत्मिक स्थिति कहाँ है? बच्चे, अपने को अशरीरी आत्मा समझो, बस करो अभी सारी बातें, बस करो कर्मणा सेवा, बस करो वाचा सेवा, बस हुई सारी सेवा है बच्चे, वरना जीवन चली जाएगी सेवा करते करते करते, और हाथ कुछ नहीं आएगा, फिर पछताओगे क्या पाया, फिर अंत में पता चलेगा जो था वो भी खोया, रोना पड़ेगा। इसलिए सेवा को भी दिमाग से निकाल दो, निकाल दो। अरे बच्चे, तुम्हारा पार्ट होगा तो वो तुमसे करा लेगा, वो और ड्रामा बैठे हैं करण करावनहार। तुम क्यों सोच रहे हो? तुम सोचो तुम अपनी अवस्था में कैसे आओगे, ये सोचो। तुम अपने से बहुत दूर जा चुके हो, बहुत दूर। सयाना बच्चा है ना, दिन भर अपने बारे में सोचता है, दिन भर। सयाना बच्चा दिन भर अपने को देखता है, सयाना बच्चा दिन भर अपने आत्मिक स्थिति के संस्कार देखता है, सयाना बच्चा दिन भर अपने बारे में ही बात करेगा, मैं कैसा हूँ। सयाना बच्चा दिन भर अपने प्रति ही कर्म करेगा। बच्चे अपने को खोजो, बाकी सब व्यर्थ है, तुम भटक रहे हो। जहाँ हो वही रुको और अपने को खोजो, और बिना अपने को खोजे जितना ज्ञान तुम ले रहे हो सब व्यर्थ है। क्या करोगे इस ज्ञान का? वो तो अपने को खोजने के बाद का ज्ञान है, अपने को खोजने के बाद का ज्ञान है बच्चे। तुम उसे खोज रहे हो। भोजन तो लगा है डाइनिंग टेबल पर पहले हाथ मुंह धो के तो आओ, पैर धो के तो आओ, नहा के तो आओ, और कुर्सी पर तो बैठो, अपने सीट पर सेट तो हो जाओ। क्या खड़े खड़े भोजन परोसे तुम्हें? ऐसे ही अपने को खोजो बच्चे, अपने को भूल गए हो। कितना ज्ञान सुनाओ मैं, बिना अपने को खोजे सारा ज्ञान व्यर्थ है। कितना सुनाओ बताओ जरा, कोई मतलब नहीं है ज्ञान का। कितना भी सुनाओ मैं, कितना भी समझाओ मैं तुम्हें, सब व्यर्थ है। कितनी भी विधियां बताओ सब व्यर्थ है। योग की क्यों? क्योंकि योग करने वाला ही अपनी जगह पर नहीं है, तो योग की विधियों का करेंगे क्या? बस कमेंट्री सुनेंगे, एनिमेशंस देखेंगे, वाह वाह करेंगे, घर चले जाएंगे, और क्या। अपने को खोजो बच्चे, पूरा पूरा खोजो। तुम भ्रमित हो, खेल तुम्हारा तुमसे शुरू हुआ था, और जिस दिन तुम अपने को खोजोगे तुम्हारा खेल तुम पर पूरा हो जाएगा। तुम सोच रहे हो ये खेल कब पूरा होगा। हर किसी का खेल अपने खेल पर निर्भर है। तुम कब आए, तुमने अपने आप को कब पाया, अब क्या होगा देखो। तुम दूसरे को मत देखो, अशरीरी आत्मा समझो, और अखंड प्रैक्टिस, अखंड बच्चे। जब तक तुम उस अवस्था को ना पाओ तब तक टूट पड़ो उस अवस्थाओं के विधि पर, पाने की पूरी चेष्टा करो। तुमने कभी देखा है, मूवीज में वगैरह देखा होगा, कोई बहुत भूखा प्यासा बहुत दिन का, और उसके सामने अन्न पानी रखा जाता है, वो कैसे खाता है? टूट पड़ता है, बहुत दिन का भूखा प्यासा है ना। ऐसे तुम इस अवस्था की विधि पर टूट पड़ो। वो उस समय किसी को देखता है, भूखा प्यासा है वो? कोई अगर उससे बात करे वो बात करता है? नहीं, उससे अपनी भूख मिटानी है, प्यास मिटानी है, तुम्हें नहीं लगता। तुम्हें अपने आप को पाना है। समझ की बात है बच्चे, चिंतन करो, पूरा 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 चिंतन करो। अपने को पाने का पूरा प्रयास करो, सारी ताकत लगाओ। थोड़ी थोड़ी ताकत तुम लगाओगे इससे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अभी गृहस्थ में चलने वाले बच्चे सोचेंगे हम क्या करें। बच्चे देखो, मैं जानता हूँ गृहस्थ में चलते चलते तुम्हारे संस्कार कड़े हो चुके हैं, तो कम से कम 15 मिनट से शुरुआत करो। हर घंटे में 15 मिनट आत्मिक स्थिति का अभ्यास याद से। 15 घंटे में तो कोई भी काम हो जाता है, बचा हुआ कोई भी सेवा हो जाती है। हर घंटे में 15 मिनट। जब ऐसे करोगे तब कुछ हो पाएगा। टूट पड़ो तब तक जब तक अपने को ना पाओ। ध्यान में रखना इस बात को, बाकी मर्जी तुम्हारी। प्रश्न है, कौन सा वंडरफुल खेल संगम पर ही चलता है, दूसरे युगों में नहीं? उत्तर है, फारकती दिलाने का। राम रावण से फारकती दिलाते हैं, रावण फिर राम से फारकती दिला देते हैं। यह बड़ा वंडरफुल खेल है। बाप को भूलने से माया का गोला लग जाता है, इसीलिए बाप शिक्षा देते हैं। बच्चे अपने स्वधर्म में टिको। देह सहित देह के सब धर्मों को भूलते जाओ। याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहो। देही अभिमानी बनो। समझे बच्चे? एक ही बात है, सारा ज्ञान घूम फिर कर तुम पर ही आता है। आत्मा समझ है, बाकी मर्जी तुम्हारी। तुम बाकी किसी बात के पीछे मत लगो बच्चे। बाप को आत्मिक स्थिति वाले बच्चे बेहद पसंद है, आत्मिक स्थिति वाले। पहला पाठ पक्का करने वाले बच्चे बेहद पसंद है। चिंतन करो। गीत है, जो पिया के साथ है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गीत सुना। हर एक बात में नंबरवार कहा जाता है, क्योंकि यह कॉलेज है अथवा यूनिवर्सिटी कहो। सच्चा सच्चा सत का संग भी है। सत कहा जाता है एक को, वह एक ही बार आते हैं। अब इस समय तुम सच सच कहते हो कि हम सत के संग में हैं। तुम ब्राह्मण ही उस सत कहने वाले ज्ञान सागर के सम्मुख बैठे हो। गाया भी जाता है, जो पिया के साथ हैं उनके लिए ज्ञान की बरसात है। पिया पिता को कहा जाता है, तुम बच्चों के सम्मुख पिया की ज्ञान बरसात है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर, ज्ञान सागर पतित पावन अब हमारे सम्मुख है। हम पतित से पावन वा कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल बन जाएंगे फिर यह शरीर नहीं रहेगा। कली भी आहिस्ते आहिस्ते खिलती जाती है, फट से खिल नहीं जाती। खिलते खिलते फिर कंप्लीट फूल बन जाती है। अभी कोई भी कंप्लीट फूल नहीं बने हैं, वह तो कर्मातीत अवस्था हो जाती है। देही अभिमानी तो अंत में ही बनना है, पर बच्चे प्रैक्टिस अभी करनी है, अनुभव अभी करना है देही अभिमानी अवस्था का। ध्यान में रखना, वरना बच्चे होशियार हैं। बाप ने तो कहा है कि देही अभिमानी तो अंत में बनेंगे, अभी कहाँ से बनेंगे? बच्चे कहने के लिए तैयार है तुरंत। अभी तुम सबका पुरुषार्थ चल रहा है। बाप है पारलौकिक पिता, यह दोनों संगम युग के अलौकिक मात पिता ठहरे। कोई कांटे भी है, कोई कली भी है। कली को खिलने में टाइम लगता है। तुम सब नंबरवार कलिया हो, फूल बनने वाले हो। कोई अच्छी रीति खिले हैं, कोई आधा, एक दिन कंप्लीट भी जरूर खिलेंगे। बगीचा तो है ना, जानते हो हम कांटे से कली तो बने हैं, फिर फूल बन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई तो कली ही खत्म हो जाती है, कोई थोड़ा खिलकर खत्म हो जाते हैं। माया के बड़े भारी तूफान आते हैं, सेंटर्स खोलते भी कोई कोई ख़त्म हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। माया बड़ी ज़बरदस्त है। यह है चटा बेटी राम और रावण की। राम राम कहा जाता है, ऐसे नहीं त्रेता वाले राम को याद करते हैं। यह राम राम परमात्मा के लिए कहते हैं। रावण से राम की भेंट होती है। राम है बाप, रावण है दुश्मन माया। माया भी ज़बरदस्त है। यह खेल है एक दो को फारकती दिलाना। राम तुमको माया रावण से त्याग दिला रहे हैं। माया फिर तुमको बाप राम से त्याग दिलाती है। बाप कहते हैं देह सहित जो भी संबंधी आदि देह के हैं सबका बुद्धि से त्याग करो। धर्मानि मैं फलाना हूँ, फलाने धर्म का हूँ, यह भूल अपने स्वधर्म में टिको। बच्चे अपने स्वधर्म में आ जाओ, कुछ भी करके तुम जो हो उस सत्य स्वरूप में आओ। देखो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हें क्या अनुभव होगा, पॉसिबल हुआ तो शेयर करना। बस अपने सत्य स्वरूप में आओ, मज़ा वहाँ पर ही है। तुमने अपना सत्य स्वरूप खोया है और असत्य धारण किया है। ध्यान देना बच्चे इस बात पर, सत्य में आना है। कुछ भी हो जाए पूरा पूरा सत्य में आना है। ताकत लगाओ, जोर की लगाओ, पूरी चेतना उस सितारे में चली जाए, उस बिंदी में चली जाए कि ये मैं हूँ। पूरी चेतना उस चैतन्य में चली जाए। हो सके तो ट्राई करो, मर्जी तुम्हारी। देह के सब धर्म छोड़ अपने को अकेला समझो। समझे बच्चे, अकेला। तुम क्यों साथी चाहते हो जब बाप है, वो भी तो बंधन है। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ जो साथी बना रहे हो 84 जन्म चलेंगे? अरे बच्चे, एक निराकार को साथी बनाओ, सदा साथ रहेगा। बस एक निराकार, और यहाँ पूरे अकेले रहो, कंप्लीट। तुम माया में मत फंसो, बुद्धि से अकेला रहना है। बस मैं और मेरा बाबा, परिवार में भी रहना है पर अकेला भी रहना है। परिवार का मुखिया कौन है? निराकार बाप। उसके साथ जुड़े हुए रहना है, बाकी परिवार में सारे कर्तव्य निभाने हैं। समझ की बातें। इस दुनिया की हर एक चीज से त्याग दिलाते हैं। अशरीरी बन जाओ, मेरा बनकर और मेरे को याद करो। बाप को भूले तो माया का गोला लग जाएगा। बाप को याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहो। माया भी बड़ी ज़बरदस्त है। बच्चे देखो, थोड़ा ही याद करो और परिणाम देखो क्या होता है। फिर तुम ही डिसाइड करना कितना करना चाहिए। चखो तो सही, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस। चढ़ो तो सही बच्चे, मर्जी तुम्हारी। माया भी बड़ी ज़बरदस्त है। बाप का बनकर भी फिर माया त्याग दिलाकर बाप से छुड़ा देती है। बाप को शल कोई फारकती न दे। आधा कल्प तुम मुझे याद करते आए हो। तुम ही संपूर्ण भक्त हो ना, भक्ति भी तुमने ही शुरू की है। तो बाप आकर माया से त्याग दिलाते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझो। इस कपड़े को यानि देह को भूलते जाओ। बस अभी हमको जाना है। उस नाटक में भी एक्टर्स होते हैं, उनको भी मालूम रहता है। बस अभी 5-10 मिनट बाद हमारा खेल पूरा होने का समय आया है। फिर हम घर चले जाएंगे। खेल पूरा होने के समय यह बुद्धि में रहता है, शुरू में नहीं। तुम भी समझते हो, हमारे 84 जन्म पूरे हुए, बाकी कितना समय होगा? तुम कहेंगे हम कब स्वर्ग व सुखधाम में जाएंगे, परंतु बाप कहते हैं इस लाइफ को तो वैल्यूएबल, अमूल्य कहा जाता है। तुम बड़ी भारी सर्विस करते हो श्रीमत पर, सिर्फ तुम पांडव ही श्रीमत पर चलते हो। गीता आदि में यह बातें नहीं हैं, यह बाबा बहुत ही शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, गुरु किए हुए हैं। जो भी सब एक्टर्स की एक्टिविटीज़ हैं उन सब को तुम जानते हो। शास्त्र तो बाद में बैठ बनाते हैं, वह क्या जाने। यह भी ड्रामा में खेल बना हुआ है। गीता भागवत आदि सब अपने अपने समय पर रिपीट होंगे। गीता है माई बाप, गीता को माता कहा जाता है, और कोई पुस्तक को माता नहीं कहेंगे। इनका नाम ही है गीता माता। अच्छा, उनको किसने रचा? पहले पहले पुरुष स्त्री को एडॉप्ट करते हैं ना, पुरुष शादी करते हैं तो मुख से कहते हैं यह मेरी स्त्री है, तो रचता हुए ना। फिर उनसे बच्चे होते हैं तो भी कहेंगे यह हमारे हैं, बच्चे भी कहेंगे यह हमारा बाप है। तुम भी बाबा की मुखवंशावली हो, कहते हो बाबा हम आपके हैं। इतना समय हम माया की मत पर चलते आए, अभी आपकी मत पर चलेंगे। माया कोई मुख से मत नहीं देती है, एक्ट ऐसी करते हैं। यहाँ तो बाप मुख से बैठ समझाते हैं। तुम सब भारतवासी हो, जानते हो कि भारत ही सिर ताज था, अभी दोनों ताज नहीं है। न होली न अनहोली गाया जाता है, हर होलीनेस हिज होलीनेस, स्त्री पुरुष दोनों को कहते हैं। सन्यासियों को हिज होलीनेस कहते हैं, परंतु प्रवृत्ति मार्ग है नहीं। प्रवृत्ति मार्ग में तो स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं। सो तो सतयुग में दोनों पवित्र होते ही हैं। जिसको कंप्लीट पवित्र कहा जाता है, आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। यह पतित दुनिया में दोनों पवित्र तो हो न सके। तो अभी तुम बाप के सम्मुख सुन रहे हो, जिसको ज्ञान बरसात कहा जाता है। वह है विष की बरसात, यह है ज्ञान अमृत की बरसात। गाते हैं ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। तुमको अब ज्ञान अमृत मिल रहा है। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही सिर्फ गाते रहते हैं। अभी तुमको प्रैक्टिकल में ज्ञान अमृत मिलता है, इससे ही अमृतसर नाम पड़ा है। बाकी तालाब तो ऐसे बहुत हैं, मान सरोवर भी है ना। मान सरोवर मनुष्यों का सरोवर तो वह है नहीं, यह है ज्ञान अमृत का सरोवर। इनको ज्ञान मान सरोवर भी कहा जाता है, ज्ञान सागर भी है। कोई नदियाँ, कोई कैनाल्स, कोई टूब के हैं, नंबरवार है ना। बच्चे समझ गए हैं, कल्प पहले भी बाप ने समझाया था, फिर अब समझा रहे हैं। तुम निश्चय करते हो हम बाबा से राजयोग सीख रहे हैं, जिससे कल्प पहले भी हम स्वर्ग के मालिक बने थे। प्रजा भी कहेगी हम मालिक हैं। भारतवासी कहते हैं ना, हमारा भारत सबसे ऊंच था, अभी हमारा भारत सबसे नीच है। हमारा भारत बहुत श्रेष्ठाचारी था, अब हमारा भारत बहुत भ्रष्टाचारी हो गया है। और कोई खंड के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, सभी धर्म वाले भी जानते हैं कि भारत प्राचीन था, तब हम लोग नहीं थे। सतयुग में ज़रूर सिर्फ भारतवासी ही होंगे। गाते भी हैं, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ही था और कोई धर्म नहीं था। नई दुनिया में नया भारत था, अभी पुराना भारत है। भारत हेविन था, परंतु किसकी बुद्धि में पूरा बैठता नहीं है, यह तो बहुत सहज समझने की बात है। बाप तुमको समझा रहे हैं, तुम प्रैक्टिकल में कर्तव्य कर रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्चा सच्चा व्यास बनना है, सच्ची गीता सुनानी है। तुमको कोई पुस्तक आदि तो हाथ में उठाना नहीं है। तुम तो रूप बसंत हो, तुम्हारी आत्मा गीता का ज्ञान सुनती है बाप से। तुम्हारी बुद्धि में एक ही बाप है, और कोई गुरु गोसाई साधु संत आदि तुम्हारी बुद्धि में नहीं है। तुम कहेंगे हम ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा से सुनते हैं, जिसको ही सत श्री अकाल कहा जाता है। अक्षर कितना मीठा है, अकाली लोग बड़ी जोर से कहते हैं सत श्री अकाल। यह तुम बच्चे ज्ञान डांस करते हो, इसलिए कहा जाता है सच तो बीठो नच, सच्चे हो तो खुशी में नाचते रहो। फिर तुम वहाँ जाकर रास विलास करेंगे। मेरा भी ध्यान में रास आदि करती थी, परंतु उसने भक्ति की। तुम कोई भक्ति नहीं करते हो, दिव्य दृष्टिदाता बाप स्वयं तुमको पढ़ा रहे हैं। बहुत बच्चे साक्षात्कार करते रहते हैं तो मनुष्य समझते हैं यह तो जादू है। बच्चे पढ़ाई में घूमते फिरते हैं ना, तुम्हारे लिए भी यह खेल पाल है। यह कोई सब्जेक्ट नहीं, इनके मार्क्स नहीं, खेलने कूदने की मार्क्स नहीं होती है। यहाँ भी जो इस खेल पाल में रहते हैं उनको ज्ञान की मार्क्स नहीं मिल सकती। यह तो खेल पाल है, इसको अव्यक्त खेल कहा जाता है। वह व्यक्त खेल, यह अव्यक्त खेल। रास आदि करने वाले को मार्क्स नहीं मिलती है, इसलिए बाबा कहते हैं ध्यान से ज्ञान अच्छा है, श्रेष्ठ है। ध्यान तो सिर्फ एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार है, यह है ही राजयोग। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, वह तो इन आँखों से देखते हैं। हम फलाना बनेंगे, यहाँ तो यह तुम्हारी है भविष्य की एम ऑब्जेक्ट। प्रिंस प्रिंसेस बनना है, फिर तुम महाराजा महारानी बनते हो। बिगर एम ऑब्जेक्ट अगर कोई कॉलेज में बैठे तो उनको क्या कहेंगे? भारत में और जो सत्संग है उनमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं, पाठशाला भी कह सकते हैं। सत्संग को कभी पाठशाला नहीं कहा जाता। तुम बच्चे जानते हो हम पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। सारी यूनिवर्स को तुम पवित्र स्वर्ग बनाते हो, अपने लिए ही इस यूनिवर्स को स्वर्ग बनाते हो। जो बनाएंगे वही फिर राज्य करेंगे, ऐसे तो नहीं सब स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जो पूरे नरकवासी हैं, जिन्होंने द्वापर से भक्ति की है, वही स्वर्गवासी होंगे। बाकी सब मनुष्य सरसों मिसल पीस कर खत्म होंगे। आत्माएं वापस बाप के पास जाएंगी। कितना बड़ा विनाश होना है। अभी तो बहुत प्रजा है, कितना बैठ गिनेंगे। एक्यूरेट गिनती कर न सके। दुनिया में कितने मनुष्य हैं, यह सब खत्म हो जाएंगे। बच्चों को बनेंट्री का भी मिसाल बताया गया है। कलकत्ते में बहुत बड़ा झाड़ है, उसमें थोर यानी फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। अभी देवी देवता धर्म भी है, परंतु उनका नाम प्राय लोप है। ऐसे नहीं कहेंगे कि फाउंडेशन है ही नहीं, सड़ा हुआ भी कुछ न कुछ निशान तो रहेगा ना। प्राय लोप का अर्थ ही है बाकी थोड़ा रहा है। चित्र है, भारत में लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। यह तो बड़ा सहज है, परंतु माया रावण बुद्धि को ताला लगा देती है। परमपिता परमात्मा है बुद्धिवानों की बुद्धि। मनुष्यों में बुद्धि है, परंतु ताला लगा हुआ है। बच्चे ध्यान में रखना, परमपिता परमात्मा अगर बुद्धिवानों की बुद्धि है तो बंद बुद्धि के ताले की वो चाबी भी है परमपिता परमात्मा। इसलिए श्रीमत पर चलो। जिसकी बुद्धि बंद है, जिसकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी श्रीमत है, जो श्री श्री से मिलती है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। बाकी और कोई चाबी नहीं है, मर्जी तुम्हारी। मनुष्यों में बुद्धि है परंतु ताला लगा हुआ है। पत्थर बुद्धि हो गए हैं, अब बाबा फिर से तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं, आत्मा को बनाते हैं। बुद्धि आत्मा में रहती है ना बच्चे। बुद्धि कहाँ है? आत्मा में। मन कहाँ है? आत्मा में। संस्कार आत्मा में, गुण शक्तियाँ आत्मा में। दिखाओ जरा कहाँ है? बाप ने तो दिखा दी। समझ की बात है बच्चे, मर्जी तुम्हारी। अभ्यास करना हो तो करो, ना करना हो मत करो, मर्जी तुम्हारी। जो अच्छा लगे करो। बुद्धि आत्मा में रहती है ना, कहा जाता है ना तुम तो पत्थर बुद्धि भैंस बुद्धि हो। यहाँ भी ऐसे हैं, कुछ भी समझाओ तो समझते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं। श्रीमत तो सदैव कहेगी बच्चे अंधों की लाठी बनो, सुनना और फिर सुनाना है। इसलिए सर्विस में दूर जाना भी पड़ता है, एक जगह बैठ तो नहीं जाना है। बच्चे सुना है तो सुनाना भी तो है, पर सुनाते वक्त ध्यान में रखना है कि मैं जो सुना रही हूँ या सुना रहा हूँ, ये मेरा नहीं है, ये बाप का है। बाप ही सुना रहा है। मैं डबल सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ, ध्यान में रखना बच्चे। वरना अहंकार से सुनाते हो, हम आत्मा है, परमात्मा को याद करना चाहिए, ये सब ड्रामा है। अहंकार से सुनाते हो, इसलिए किसी के अंदर नहीं जाता। बच्चे अपने बोल को हमेशा चेक करना, कहीं अहंकार भरे तो बोल नहीं है तुम्हारे, चेक करना। अभी तुम ज्ञान और योग सीख रहे हो, यहाँ तुम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो, सहज राज योग सीख रहे हो। वर्षा लेने के लिए तुम आए हो, विष्णुपुरी की राजधानी लेने के लिए। विष्णु की विजयमाला बनेगी। अभी तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो, तुम जानते हो बरोबर डीटी सॉवरेंटी थी। सतयुग आदि में राजा रानी थे, अभी कलयुग अंत में तो राजा रानी कोई भी कहला नहीं सकते, परंतु गवर्नमेंट को मदद करते हैं तो फिर महाराजा का टाइटल मिल जाता है। वह गवर्नमेंट भी टाइटल देती थी, राय साहेब, राय बहादुर आदि। अभी तो तुमको बड़ा टाइटल मिल रहा है प्रैक्टिकल में। तुम हर होलीनेस, हिज होलीनेस महाराजा महारानी बनेंगे। तुम पर डबल ताज है। पहले होता है होली राज्य, फिर अनहोली राज्य, अभी फिर अनहोली नो राज्य। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। ड्रामा को समझना है बच्चे, ड्रामा को ध्यान से समझो पूरा पूरा, यही सार है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को कदम गुना कदम की भी कदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।
धारणा के लिए मुख्य सार है। एक नंबर, रोज ज्ञान अमृत के मान सरोवर में स्नान कर आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। माया की मत छोड़ बाप की मत पर चलना है। दो नंबर, यह अमूल्य संगम का समय है। इस समय श्रीमत पर चल सर्विस करनी है। सच्चा व्यास बन सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। रूप बसंत बनना है। वरदान है अनेक प्रकार की आग से बचने और सर्व को बचाने वाले सच्चे रहम दिल भव। आज का मानव अनेक प्रकार की आग में जल रहा है। अनेक प्रकार के दुख चिंताएं समस्याएं भिन्न भिन्न प्रकार की यह चोट जो आत्मा को लगती है, यह अग्नि जीते हुए जलने का अनुभव कराती है। लेकिन आप ऐसे जीवन से निकल श्रेष्ठ जीवन में आ गए। आप शीतल सागर के कंठे पर बैठे हो। अतीन्द्रिय सुख शांति की प्राप्ति में समाये हुए हो। तो रहम दिल बन अन्य आत्माओं को भी अनेक प्रकार की आग से बचाओ। गली गली में ज्ञान स्थान बनाकर सबको ठिकाना दो। स्लोगन है, जिनकी एक बाप से सच्ची प्रीत है उन्हें अशरीरी बनना सहज है। इसलिए बाप कहता है बच्चे सच्चा दिल रखो तो प्रीत होगी, और प्रीत है तो बाप बना देगा, मर्जी तुम्हारी। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और सदा मौज करते रहो, श्रीमत पर चलते रहो। सदा अपनी स्थिति में रहकर बाप की याद में रहना, कंबाइंड स्वरूप को कभी भूलना नहीं। अच्छा, ओम शांति।
वाह ब्रह्मा वाह, वाहे में आत्मा वाह, वाहे मेरा भाग्य वाह, वाहे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाहे में स्वराज अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, कदम गुना कदम गुना कदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति।